ജ്ഞാനത്തിമിര ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകദാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാൻവിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലലിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ്ച നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതിദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധർ ശിവാസാദി ഗൗർഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തോ പാഞ്ചവേ ശ്ലോക കി ചർച്ച മേ ഹം യഹാ തക് പഹുഞ്ചേ ഥേ. അച്ഛാ അച്ഛാ തോ ഇസ്കേ പഹലേ പഹലേ ജോ ചർച്ച ഹുഈ ഥി ഉസ്കേ ചാർട്സ് തോഡേ ഹംനേ ലിഖേ ഹൈ കി മധ്യം അധികാരി കാ വ്യവഹാർ യേ തോ ഹോ ഗയാ ഇസ്കോ ഘുമായിയേ. फिर दीक्षा के लिए योग्यता, इसकी चर्चा तो की थी लेकिन चार्ट नहीं था इसके बारे में. तो इन श्लोकों के आधार पर और श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के आधार पर अलग अलग जगह से इसको इसका संग्रह करके ये चार्ट बनाया गया है. तो दीक्षा के लिए योग्यता, पहली बात तो कृष्ण भावनामृत में रुचि होनी चाहिए, दूसरी बात दीक्षा की इच्छा होनी चाहिए. हमें याद है कई साल पहले, करीब 20 से अधिक वर्ष हुए, किसी एक मंदिर में एक आदमी आया था और वो कुछ सवाल जवाब कर रहा था. किसी भक्तों ने उसे देख लिया, उसके साथ चर्चा की, कॉलेज का विद्यार्थी था वो. तो भक्तों ने रात भर उसको प्रचार किया, सुबह दीक्षा के लिए बिठा दिया. उसे पता भी नहीं था दीक्षा क्या, दीक्षा होने वाला था मंदिर में, तो उसे बिठा दिया. ऐसे हुआ करता था पहले, परंतु उसे यह भी नहीं पता था कि दीक्षा क्या होती है, अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी. तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दीक्षा की इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए और सही कारणों के लिए होनी चाहिए. केवल यह एक प्रतिष्ठा की बात नहीं है या सामाजिक कोई चीज की बात नहीं है कि अन्य लोग क्या कहेंगे. तीसरी बात, इसमें जाति नस्ल रंग आदि का भेदभाव नहीं होता. ये इस जाति का है इसलिए इसे दीक्षा नहीं मिल सकती है, वो उस जाति का है इसलिए बहुत ही जल्दी उसे मिल जाएगी दीक्षा, ऐसे सब नहीं है. फिर तपस्या ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार होना चाहिए साधक को. अगर ये तपस्या करने के लिए तैयार नहीं होगा तो दीक्षा का क्या मतलब. आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, अर्थात जिज्ञासु होना चाहिए. परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखनी चाहिए. फोन बंद होने चाहिए क्लास में. परम सत्य के विषय में रुचि दिखनी चाहिए, मतलब दिखावटी नहीं, वास्तव में ऐसी होनी चाहिए कि वो दिखे कि वास्तव में इस भक्त को रुचि है और जिज्ञासा है वही क्रीड, कास्ट क्रीड, तरह तरह के समाज, हम इस समाज के हैं, उस समाज के हैं। गुरु के उपदेशों का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो दीक्षा लेने का क्या मतलब। दिखाने के लिए गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए क्या? हमारे पास भी गुरु हैं, जैसे हमारे पास मारुति गाड़ी है, हमारे पास भी गुरु है। देखो तस्वीर उनकी लगाई हुई है यहां पर दीवार पर, हम भी अच्छे आदमी हैं, धार्मिक आदमी हैं। भोग में अरुचि होनी चाहिए, ठीक है? क्या इसको घुमाएंगे फिर? फिर ये देखेंगे कि दीक्षा है क्या, ये दीक्षा के लिए योग्यता ये होनी चाहिए, लेकिन दीक्षा है क्या और दीक्षा पर होता क्या है। दीक्षा के द्वारा मनुष्य के क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अगर वो प्रामाणिक शिष्य हो तो, और सही कारणों से अगर उसने दीक्षा ली हो तो, अगर दीक्षा लेने के बाद कोई विद्यार्थी या कोई शिष्य नियमों का पालन नहीं करेगा, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो फिर भोग में अरुचि और कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़ेगी नहीं। दीक्षा के समय भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार करते हैं। उदाहरण प्रभुपाद यहां दे रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के धनी परिवारों के छात्र जो कि इस्कॉन के भक्त बने, जो शिष्य बने, कि कैसे ये लोग हालांकि इतने भोग इतने ऐश्वर्य के वातावरण में पाले पोसे गए थे, फिर भी जब श्रील प्रभुपाद जी का संपर्क हुआ तो फिर भोग में अरुचि हो गई और बहुत तीव्र जिज्ञासा हुई कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर प्रभुपाद जी का शरण ग्रहण किया। ठीक है, ठीक है, घुमा लीजिए। तो वैष्णव कौन होता है इसकी अधिक व्याख्या ये हम पढ़ चुके थे क्या? नहीं ना पढ़े थे? कहां तक पढ़े थे हम?
तो पढ़े हैं जब प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी मान लेना चाहिए।
अच्छा 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 ठीक है। अच्छा तो ये रहने दीजिए, ये बाद में आएगा, पहले ही पढ़ लेते हैं। तो दो मिनट लिखना बंद करें और आगे पढ़ें। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि वहां से आज कौन पढ़ेंगे जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है किसी ने? हाँ,
कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना भव्य है कि यदि कोई दसों अपराधों से उठते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका मन निश्चित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे ये भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जहाँ रूपमूल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रम क्रम भक्त भैदे उत्तम, जिसकी श्रद्धा कोमल तथा नम्य हो वह अनपदीक्षित कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भक्ति के शुभारंभ अनपदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है।
ठीक है, तो पहले आपको याद होगा एक चार्ट दिखाया था जिसमें कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारियों के लक्षण थे। अभी जैसे जैसे चर्चा आगे चल रही है तात्पर्य में, तो अधिक व्याख्या दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो उस चार्ट को आप फिर से खोलिए जहां जिस पन्ने पे आपने लिखा था, और कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये दो पॉइंट और ज्यादा लिख लीजिए। एक, कोमल श्रद्धा। जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, ये श्लोक है ना तात्पर्य में, तो उसकी श्रद्धा कोमल है। दूसरी बात, क्रमशः उत्तम अधिकारी के पद की ओर, आप लिखिए इसी में उसके नीचे अगला पॉइंट कनिष्ठ अधिकारी के लिए, क्रमशः उत्तम अधिकारी के पद की ओर उठता है की ओर उठता है हरि नाम लेकर, क्योंकि यहां बताया गया है क्रमे क्रमे तेहो भक्त होइबे उत्तम। तो जैसे जैसे वो हरिनाम संकीर्तन करता है, अन्य नियामक सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसकी प्रगति होती रहती है और शनै शनै वो उत्तम अधिकारी की ओर प्रगति करता है। ठीक है, तो ये कनिष्ठ अधिकारी के और दो लक्षण। अच्छा, आगे पढ़िए।
संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है, किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई 64 माला जप न कर ले तब तक उसे पतित समझना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सभी पतित हैं, किंतु क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतः हमें परम पतित पावन से चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है।
तो सबको लखपति बनना चाहिए, है ना? लखपति का मतलब क्या है? कम से कम 1,00,000 नाम दिन में रोज लेने चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक ऐसे कोई नहीं करता वो पतित माना जाता है। फिर भी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये आजकल अनेक लोगों के लिए संभव नहीं है, बहुत कठिन नियम है सबके लिए करना। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम सब बड़ी गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, 64 माला सबके लिए संभव नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम बनाया है। और आगे चल के अब वैष्णव की पहचान क्या है, सामान्य एक परिभाषा या पहचान वैष्णव की क्या है वो देते हैं। ये विषय तो बहुत बड़ा है कि वैष्णव कौन है, फिर भी यहां एक झलक मिल रही है। हाँ, आगे पढ़िए। ये चैतन्य चरितामृत की लीला है, संवाद वहां हुआ। हाँ,
श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त श्री सत्यराज खान ने महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे जारा मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूजे श्रेष्ठ सभा का। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति माना मान लेना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ही गत वैष्णव परित तार सम्मान। जब कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभी अभी रुचि रखता है जो या जो अभ्यास बस कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना ही चाहिए। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार है वे कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने विकारों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण महामंत्र के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण के लीलाओं के प्रति आदर भाव है। अतः हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वहाँ से क्रमशः कृष्ण महामंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण महामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो उसको सम्मान वैष्णवों का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जो महान उपदेशक माने जाते हैं वे क्रमशः महात्मा बुद्धि की ओर गिरते जा रहे हैं।
ठीक है। हाँ, क्योंकि
वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ वैष्णव की पहचान, तो यहाँ इस चार्ट में इसका सार दिया हुआ है। वैष्णव की अधिक व्याख्या यहाँ कर रहे हैं प्रभुपाद जी। जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। किन लोगों में? जो नहीं ले रहे हैं कृष्ण का नाम, उनमें से एक भी आदमी हो एक बार कृष्ण का नाम ले रहा है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। लखपतियों में से एक व्यक्ति हो जो एक बार कृष्ण का नाम ले रहा है उसे श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए उस संघ में। तो किस संघ की बात हो रही है? जहां पर नहीं लिया जा रहा है और ऐसे संघ में एक व्यक्ति एक बार भी कृष्ण का नाम ले रहा है तो हमें जानना चाहिए कि वो श्रेष्ठ है और वो भी वैष्णव कहलाता है। दूसरी बात, जो कृष्ण नाम के कीर्तन में कीर्तन मात्रा बड़ी होनी चाहिए, कृष्ण नाम के कीर्तन में अभी ये मराठी है ना, इसलिए मराठी सब स्पेलिंग लिखे हैं, सब मात्रा उल्टी हो गई। मात्राएं जहां दीर्घ होनी चाहिए वो ये हो गई। आज श्रीकांत सेन प्रभु ने लिखा था, जो कृष्ण नाम के कीर्तन में अभी रुचि मात्रा कम होनी चाहिए तो रखता है और उसका अभ्यास करना पसंद करता है उसे वैष्णव मानकर कम से कम मन से सम्मान करना चाहिए। ठीक है। और यहां भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिए इस तात्पर्य का एक वाक्य, कि निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। वो तात्पर्य में एक वाक्य है, निष्कर्ष यह निकलता है कि ठीक है, हाँ इसको घुमाएंगे आप चार्ट को, अच्छा अभी चर्चा तो प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी की करने वाले हैं और बाद में श्रद्धा की बात करेंगे, परंतु हम तात्पर्य में थोड़ा आगे जाएंगे, श्रद्धा की बात पहले करके फिर मध्यम अधिकारी की चर्चा करेंगे। तो श्रद्धा ये भक्ति के लिए अधिकार है। कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, ये कैसे निर्धारित किया जाता है? श्रद्धा के अनुसार। इसलिए यहां पर हाँ आगे इसको पढ़ना है। हाँ श्रद्धा ये भक्ति के लिए अधिकार है। तो ऐसा कीजिए, आप आगे बढ़िए तात्पर्य में, वो एक परिच्छेद छोड़ दीजिए और श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी वो पढ़िए। तो अब लिखना दो मिनट के लिए आप बंद करिए और किताब में पढ़िए श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, एक परिच्छेद के बाद में, फिर इस एक परिच्छेद में वापस हम लौट के आएंगे। ठीक है पढ़िए आप। ठीक है, अभी यहां प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, चैतन्य चरितामृत के दो श्लोकों का उल्लेख किया है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? लिखिए बाद में, अभी केवल सुनिए। क्या कहा है प्रभुपाद जी ने इन दो श्लोकों में? यहां पढ़िए, श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति की के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। अर्थात जैसे जैसे श्रद्धा का विकास होता है, वैसे वैसे भक्त का अधिकार भक्ति में बढ़ जाता है, फिर वो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम पद तक पहुंच सकता है। तो ये श्रद्धा ही बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के अनुसार ये विश्लेषण या विभाजन इस प्रकार से किया गया है। तो श्रद्धा क्या चीज है, इसका भी वर्णन यहां प्रभुपाद जी कर चुके हैं चैतन्य चरितामृत से। तो श्रद्धा का क्या वर्णन है, परिभाषा क्या है, पढ़िए पढ़िए जो फिर से वो श्रद्धा की परिभाषा एक वाक्य पढ़िए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे श्लोक है ना, उसका पहला लाइन पढ़िए जो अनुवाद है, एक पहला वाक्य।
कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुसंगिक कार्य संपन्न करता है। दृढ़ विश्वास जो भक्ति करते हैं रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है।
तो ये श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, केवल भक्ति करने मात्र से सब कुछ संपन्न हो जाएगा, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा का विकास जैसे जैसे होता है, व्यक्ति प्रगति करते रहता है। तो और श्रद्धा के अलग दृष्टिकोण से इसका वर्णन, अलग नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण से और आगे परिभाषा दी है। हाँ
श्रद्धा अर्थात कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण भावना मत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल श्रद्धा। श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए भगवद गीता में कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचना के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवद गीता को इसी रूप में स्वीकार किया है। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वमेतत् मन्ये यमुना तपस्वी केशव, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं समग्र रूप से सत्य मानता हूँ। भगवद्गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मन माने ढंग से भगवद्गीता के एक अंश पर व्याख्या करे और दूसरे अंश पर छोड़ दे, यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवद्गीता के आदेशों को समग्र रूप में स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, इस अंतिम श्लोक को स्वीकार करना। जब कोई इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है।
हाँ, तो भगवद गीता का एक भाग हमने स्वीकार कर लिया और दूसरा भाग स्वीकार नहीं किया, या अपने मनमाने ढंग से उसको उसकी विवेचना की, तो वो ठीक नहीं है। इसके बारे में एक दृष्टांत है, या न्याय है, इसको अर्ध कुकुट्टी न्याय कहते हैं, आधा कुछ स्वीकार करना आधा नहीं करना। तो हमें पूरा जैसे है वैसे यथारूप पूर्णतया स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आगे पढ़िए।
जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में रूप तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होते। शेको मुखे भी जीवा को स्वयं भक्तिरसम सिंधु का है। हम किसी भी कृत्रिम साधन से भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते, हमें श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करनी ही होगी। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवा मुखे ही जीवा दो, जिसका अर्थ है कि हमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए ना स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं।
ठीक है, तो ये श्रद्धा की जो चर्चा है उसका सार यहाँ दिया गया है। श्रद्धा विषय कि श्रद्धा ये भक्ति के लिए अधिकार है, तो अब आप लिख सकते हैं कि मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति में कनिष्ठ मध्यम तथा उत्तम कहलाता है। श्रद्धा का अर्थ है वह दृढ़ विश्वास कि कृष्ण की दिव्य सेवा करके सारे अनुषंगिक कार्य संपन्न होते हैं। अनुषांगिक होना चाहिए, श्रद्धा का अर्थ है। और एक अर्थ, श्रद्धा का अर्थ है भगवद गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना बिना विवेचन के, और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। पूरी मात्रा गलती है, स्वीकार करना। जब इस प्रकार से हम पूर्णतया श्रद्धावान बन जाते हैं तो यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। तो श्रद्धा से भक्ति में कैसे प्रगति होती है, या किस प्रकार से श्रद्धा भक्ति मार्ग महत्वपूर्ण है, ये यहां से हम जान सकते हैं।
भगवद्गीता के आदेशों को मुख्य स्वीकार करना बिना
विवेचन के। ठीक है, अब जो अंतिम परिच्छेद था उसके तीसरे लाइन में एक वाक्य है, वो उसको अंत में लिख लीजिए, फिर ये चर्चा पूर्ण हो जाएगी। और वो वाक्य है, ये सब आपने लिख लिया? आध्यात्मिक जीवन नहीं, जीवन। अच्छा, वो वाक्य है अगले परिच्छेद में, जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। ये एक अंतिम वाक्य आप लिख लीजिए। इसका मतलब है कि श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से शीघ्र ही हमारी भक्ति में प्रगति होगी। ठीक है, लिख लिया आपने? अभी पिछले पन्ने पे आइए और यहां हमें एक परिच्छेद पढ़ना है, सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय वो वाला पढ़िए आप। अच्छा, इसको जरा घुमाइए। तो मध्यम अधिकारी की अधिक व्याख्या यहाँ इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। ठीक है, मध्यम अधिकारी अधिक व्याख्या, शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, शास्त्र युक्ति ना ही जाने, ये पहला लक्षण जो यहां बताया हुआ है। तो आप वो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम के चार्ट में आप उसे चाहें तो वहीं पर ऐड आप लिख सकते हैं, या तो अलग से लिख के बाद में भी आप वहां लिख सकते हैं, शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है। फिर भी श्रद्धावान है और उसे हरिनाम कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा है, कीर्तन नहीं कीर्तन। नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है, यह और एक लक्षण है। प्रिस्क्राइब्ड नियत, श्रद्धावान, दृढ़ और श्रद्धावान, हालांकि उसके शास्त्रों का ज्ञान इतना नहीं है फिर भी वह दृढ़ है और श्रद्धावान है। भक्ति की भावी प्रगति का पात्र है ये व्यक्ति, क्योंकि वो श्रद्धावान है और दृढ़ है, भले उसके शास्त्रों का ज्ञान पुष्ट नहीं हो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़िए। जहां श्रद्धा की चर्चा समाप्त हुई उस परिच्छेद में, तो यहां से आप शुरू कीजिए। अंतिम दो परिच्छेद पढ़ेंगे हम इस श्लोक के तात्पर्य में। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, ठीक है वो पढ़िए अभी।
जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का नित्य सेवक मान लेता है, तो वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता।
अब उत्तम अधिकारी का वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी पुनः, हालांकि अन्य जगह में भी उत्तम अधिकारी के वर्णन कर चुके हैं जगह जगह पर, अब यहां पर भी उत्तम अधिकारी के बारे में बतला रहे हैं। यहाँ पढ़िए।
वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्वभर में कृष्ण भावना में आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और छह विधियों के अनुसार गदा के प्रतिनिधि की तरह तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वो गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से पतन होता है।
तो यहाँ पर उत्तम अधिकारी का वर्णन है, अधिक व्याख्या यहाँ पर है। उत्तम अधिकारी अधिक व्याख्या यहाँ पर जो लिखा है, और अन्य स्थानों में भी उन बिंदुओं का संग्रह करके यहाँ ये चार्ट बनाया है।
उसी चार्ट में
चाहे तो आप लिख सकते हैं, या जगह नहीं है तो अलग से भी आप लिख सकते हैं। भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करते हैं ऐसे उत्तम अधिकारी। विधि मात्रा छोटी है। जपमाला का नियत संख्या में जप करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति तो नियमित अपने जपमाला करता है वो उत्तम अधिकारी हो जाता है, लेकिन उत्तम अधिकारी ये करता है अवश्य, इसके बिना वो उत्तम अधिकारी नहीं कहलाता है। ठीक है। सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करते रहते हैं ऐसे उत्तम अधिकारी। कैसे प्रचार को बढ़ाया जाए, कैसे आंदोलन को फैलाया जाए, कैसे भक्तों के समाज को और भी भक्ति में सुदृढ़ बनाया जाए, आश्रम के, मंदिर के, संस्था के कार्यों को कैसे और मजबूत किया जाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेते हैं, तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे मध्यम अधिकारी को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। उत्तम अधिकारी की बात हो रही है। क्या संशय क्या है? ऐसे उत्तम अधिकारी को ऐसे उत्तम अधिकारी को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। और उत्तम अधिकारी का यह भी एक लक्षण है कि अनेक पतितात्माओं को वो वैष्णव बनाते हैं। ठीक है, अब अंतिम परिच्छेद में निष्कर्ष इस सारी चर्चा का। रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि हमें जानना चाहिए, भेद करने की क्षमता होनी चाहिए, कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है। सबके साथ व्यवहार एक सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतिम परिच्छेद को पढ़िए।
इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वो कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके।
कम से कम इतना बुद्धिमान बनना चाहिए कि हमें भेद करना पता चले कि कौन क्या है। आगे बढ़िए।
अपनी भी स्थिति जाननी चाहिए और किसी उच्च पदासीन भक्त का अनुकरण नहीं करना चाहिए।
बहुत महत्वपूर्ण, अपनी स्थिति को जान लेना चाहिए और अन्यों की स्थिति को भी जान लेनी चाहिए।
इस संबंध में श्री रघुवीर ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत देते हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के अनुसार पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतितात्माओं को वैष्णव मत में अपना लेता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक वो गुरु न बने। एक नवविकसित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके पर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतः शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें।
इसमें लिखा हुआ कि मध्यम अधिकारी को भी गुरु बनने का मतलब वो शिष्य बना सकता है, तो अपने आप तो अपने कौन में तो ऐसा मतलब है कि मध्यम अधिकारी मतलब उसको स्नेह दीक्षा या गुरु की बदली में करते वैसे अपने यहाँ तो नहीं है। मतलब ऐसे तो कोई जो गुरु होगा तो फिर तो वो इतना तपास तो नहीं करेगा कि किसको गुरु होना है, तो उत्तम अधिकारी समझेगा उसको। जो भी सन्यासी हैं उनमें अगर कोई ऐसा
नहीं, हमारी संस्था में नियम ऐसे है कि दीक्षा देने के लिए जीबीसी के द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि अगर ये दीक्षा देंगे तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे सर्टिफिकेट को लेने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। कई नियम होते हैं, कईयों को पास जाना पड़ता है, जो वहां राष्ट्रीय काउंसिल होते हैं उनसे पास होना होता है, अनेक वरिष्ठ भक्तों को लिखकर देना होता है कि हाँ हम मानते हैं कि ये इस योग्य हैं कि ये दीक्षा दे सकें, है ना। तो कई विधिविधियां हैं, विधान हैं जिनका पालन करने के बाद ही फिर जीबीसी ये करती है। तो ये निर्णय हमें नहीं करना है।
वो बने हुए हैं कि तो फिर वो मध्यम अधिकारी
ने कौन डिसाइड करेगा कि मध्यम है, उत्तम है, नहीं है।
जीबीसी करेगा।
और अब वो सोचते हैं कि ये मध्यम है, इन्हें भी करना चाहिए, तो ठीक है। उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, ठीक है। हाँ
वही होता है कि जिसके प्रेजेंस मात्र से ही लोग हरिनाम लेना
ये उत्तम के श्लोक। वैसे इसलिए हमने कहा कि ये विषय बहुत बड़ा है, यही सत्यराज खान के बारे में ही चैतन्य महाप्रभु ने 3 साल उनको 3 अलग अलग उत्तर दिए कि वैष्णव कौन है। पहले साल में ये उत्तर दिया, दूसरे साल में उन्होंने कहा जो निरंतर कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है वो वैष्णव है। पहले साल में क्या कहा? जो एक बार उच्चारण करता है। दूसरे साल में क्या कहा? जो निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वो वैष्णव है। और तीसरे साल में क्या कहा? जिनको देख के मात्र ही अन्य लोग कीर्तन करना शुरू करते हैं वो वैष्णव है। तो अलग अलग स्तर के वैष्णवों का वर्णन करते हैं महाप्रभु। ठीक है, अच्छा, तो अभी 6वां श्लोक आज आरंभ करेंगे और आशा करते हैं समाप्त भी करेंगे। इसमें नहीं है, अधिक नहीं। विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर ने षड दोष और षड गुणों के बारे में व्याख्या की है और षड वेग भी, साथ साथ थोड़ा कुछ षड प्रीति लक्षणों के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है। इसके बाद में और भी है अन्य ग्रंथों में, जगह जगह जहां है उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये 6वां श्लोक 5वें से 8वां, जैसे हमने कहा था, ये वैष्णव की दृष्टि और आंतरिक विकास से संबंधित है। और इस श्लोक का विषय है, जैसे पहले दिन उपदेशामृत की सूची के दौरान चर्चा की थी, अप्राकृत वैष्णवे प्राकृत दृष्टि निषिद्ध। अर्थात अप्राकृत वैष्णव को, मतलब जो वैष्णव दिव्य स्तर पर स्थित है, उन्हें प्राकृत या भौतिक दृष्टि से देखना ये निषिद्ध है। ये श्लोक का विषय है, ठीक है ना। और इस श्लोक का छंद भी वसंत तिलक है, जो कि पिछले श्लोक में भी था। तो आइए इसको पढ़ते हैं। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः। ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः। न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः। ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। पढ़िए।
दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः। न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः। ब्रह्मद्रव किमच्छति नीरधर्मैः।
फेन पंकैः, प प है ना, तो आपकी किताब में नहीं होगा, इसमें तो है पंकैः, श्लोक में प नहीं है, तो आप लिख लीजिए।
स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर्
प्राकृतत्वम्
प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य स्पश्येत् प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर्
ब्रह्मा नहि ब्रह्म ब्रह्म द्रवत्वम् द्रवत्वम् द्रवत्वम्
ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्म द्रवत्वमुपगच्छति नीरधर्मे दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः
ब्रह्मा द्रवत्वम नहीं है ब्रह्म ब्रह्म द्रवत्वम ब्रह्म द्रवत्वम और ये बुद बुद नहीं है बुद बुद
दृष्टे स्वभाव जनितैव पुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः
माताजि
दृष्टै स्वभावजनितैव पुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां भसाम् न खलु बुद्बुदफं पङ्कैः ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः
दृष्टैः सामान्य दृष्टि से देखा गया स्वभाव जनितैः किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न वपुषः शरीर का च तथा दोषैः दोषों से न नहीं प्राकृतत्वम् भौतिक होने की अवस्था भौतिकता इह इस संसार में भक्त जनस्य शुद्ध भक्ति की पश्येत उसे देखना चाहिए गंगा अम्भसाम गंगा जल का न नहीं खलु निश्चय ही बुद्बुदफेन पंकैः बुलबुलों झाग तथा कीचड़ से ब्रह्म द्रवत्वम् दिव्य प्रकृति अपगच्छति नष्ट होती है नीरधर्मैः जल के गुणधर्मों से। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने उसके कुरूप चेहरे विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। ठीक है, इसको घुमाइए। तो यहां इस अनुवाद में, श्लोक के अनुवाद में क्या कहा गया है, छठे श्लोक के अंदर, वैष्णव को देखने की प्राकृत दृष्टि ये क्या है, यहां इस श्लोक के अनुवाद में कहा गया है। पहली बात, भौतिक दृष्टिकोण से देखना एक वैष्णव को। दूसरी बात, भक्त का निम्न कुल में जन्म लेना, ये सोचकर कि ये नीच जाति का वैष्णव है ऐसे सोचना, ये भी एक दोष है। ये दृष्टि गलत है, ये प्राकृत दृष्टि है। यदि किसी वैष्णव का कुरूप चेहरा हो या विकृत शरीर हो या वो रोगी अथवा अशक्त शरीर का हो, यह दोष अगर भक्त के शरीर में प्रकट दिखे भी, उनका शरीर कभी दूषित नहीं होता है। दूषित नहीं, दूषित नहीं होता है। तो ये शारीरिक त्रुटियां या कमियां या दोष, तथा कथित दोष हमें दिखाई भी पड़े तो इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए और इनको वास्तव में दोष नहीं मानना चाहिए। तो प्राकृत दृष्टि से वैष्णवों को देखना निषिद्ध है। विकृत शरीर, चेहरा कुरूप है, शरीर विकृत हो सकता है। जैसे वो अष्टावक्र मुनि के बारे में बताया था ना, क्या कहानी थी वो, अष्टावक्र मुनि थे, आठ जगह में बके हुए थे उनका शरीर, अष्टावक्र, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र मुनि। तो कोई थे, वो हंसे उनको देखकर और फिर उनको शाप लगा, भूल गया कौन थे वो, जनक महाराज से थे क्या? हाँ, तो शरीर का विकार, अशक्त मतलब कमजोर, शक्तिहीन, तो देखिए श्लोक में दृष्टे ही, तो यहां दृष्टि, दृष्टि मतलब ये साधारण दृष्टि, प्राकृत दृष्टि की बात हो रही है इस श्लोक में। न प्राकृतत्वम यह भक्तजनस्य पश्ये, भक्तजन यहां किस भक्तजन की बात हो रही है? एक शुद्ध भक्त की बात हो रही है। तो पश्येत कि देखना, न प्राकृतत्वम ऐसे शुद्ध भक्त के देह को वपुषश च दोषे न प्राकृतत्वम, तो प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनके शरीर के अंदर कोई दोष हो भी तो नहीं देखने चाहिए। जिस प्रकार से गंगाम्भसाम, गंगा अम्भसाम, अम्भसाम मतलब जल, तो गंगा जी का जल न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मई ही, तो नीरधर्मई, तो गंगा जल का धर्म क्या है? ब्रह्म द्रवत्वम, ब्रह्म द्रव, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक और द्रव मतलब उसका जो तत्व है वो ब्रह्म है या दिव्य है, तो ब्रह्म द्रव मतलब दिव्य प्रकृति, ब्रह्म द्रवत्व तो वो तत्व है, वो उसका गुण है, प्रभुत्व जैसे हम कहते हैं ना, प्रभुत्व जमा रहे हैं ये ब्रह्म द्रवत्व, तो गंगा जी, गंगा जल का गुण है ब्रह्म द्रवत्व। तो ऐसे जल में अगर बुदबुदे फेन कीचड़ आदि आ जाए फिर भी इसे हमें अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। अपगच्छति, न अपगच्छति, इसे गंदा या अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे गंगा जल में अवश्य स्नान करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी पहले दो परिच्छेदों में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, शुद्ध भक्ति क्या है इसकी परिभाषा भी करते हैं। हाँ पढ़िएगा।
शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की सक्रियता है मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, नाम प्रयोग चारे नाम भक्ति योगी न सेवते सौ गुणा संबंधी ब्रह्म हो जाए कल्पते। जब पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता और तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। और व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित की जाता है तो वो भौतिक चेतना है और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित की जाता है तो वो कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मा धनावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से तथा ज्ञान एवं कर्म से परे है वह शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सक्रियता है और जब कोई अनन्य शुद्ध भक्ति में संलग्न रहता है तो वह पहले से मुक्त रहता है सब मान सम्मति देता। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वो भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे, वास्तव में जब तक कोई भक्त नहीं होता तो वो दूसरे भक्त की ठीक से पहचान नहीं पाता।
ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति हर अवस्था में निर्मल है, दिव्य है, शुद्ध है। अर्थ इस अतः जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, जो शुद्ध भक्त है, वो भी निर्मल है, वो भी शुद्ध है, वो भी दिव्य स्तर पर स्थित है। तो इसलिए ऐसे भक्त को भौतिक दृष्टि से या प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और जब तक एक व्यक्ति भक्त नहीं है, भक्ति के विज्ञान में प्रवीण नहीं है, तब तक वो दूसरे को पहचान नहीं पाएगा कि ये कितना उन्नत भक्त है। ठीक है, तो इसका सार यहां जो भी तात्पर्य में है ये आने वाले चार्ट में है। तो यहां कई परिभाषाएं दी गई हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में। तो शुद्ध भक्ति, भक्ति मात्रा कम, जैसे लिखा था वैसे ही लिखना चाहिए। मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है शुद्ध भक्ति। 18वें अध्याय गीता के 18वें अध्याय में भी श्री कृष्ण एक जगह कहते हैं, कौन सा श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक, कि भक्ति दिव्य स्तर पर की जाती है। शुद्ध भक्ति दिव्य स्तर प्राप्त करके ही शुद्ध भक्ति की जाती है। कौन सा श्लोक है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेश भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। पराम मतलब पराभक्ति। ये पराभक्ति कब होती है, ब्रह्मभूत, जब ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, समझ लेता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ऐसे मुक्त अवस्था में, ब्रह्मभूत अवस्था में ये भक्ति पराभक्ति हो जाती है, शुद्ध भक्ति हो जाती है। तो यहां प्रभुपाद जी सर्वप्रथम तात्पर्य में ही कहते हैं कि शुद्ध भक्ति केवल मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। हम जो इस समय कर रहे हैं वो मिश्र भक्ति है। फिर आगे इसे अव्याभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इस श्लोक के अनुसार माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। कौन कौन बताएंगे अव्यभिचारेण का तात्पर्य क्या है? एकनिष्ठ, लेकिन ये शब्द कहां से आया है? बहुत अच्छा। हाँ,
जो शुद्ध भक्ति करने का इच्छुक रहता है वो ज्ञान मार्ग के परम कारण सबके प्रति आकर्षित में रहता है, अन्य मार्ग में उसकी खुशी नहीं होती, भक्ति में पूर्ण रूप से उसे चलता
है। ठीक है, ये व्यभिचार, व्यभिचार शब्द से आता है। तो जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य जगह इधर उधर नहीं जाती, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त, उसकी भक्ति कैसे होती है, भक्ति को छोड़कर किसी अन्य पथ को स्वीकार नहीं करता, न किसी देवी देवता के पीछे जाता है, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय स्वीकार करता है। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। फिर भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति में कोई भौतिक इच्छाएं हो तो वो शुद्ध नहीं होती भक्ति, वो मिश्र भक्ति कहलाती है। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, आप इस श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा के दौरान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक तो भौतिक चेतना, दूसरी है कृष्ण भावनामृत चेतना। भौतिक चेतना में भौतिक भोग की ओर सारे मात्राएं, भौतिक भोग की ओर लक्षित, भौतिक भोग की ओर लक्षित वो चेतना है। और यहां कृष्ण भावनामृत चेतना क्या है, कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित। अर्थात भौतिक चेतना का लक्ष्य क्या है, भोग। कृष्ण भावनामृत चेतना का लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण। तो अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति भक्ति योग कहलाती है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। जो भक्त शुद्ध भक्ति योग भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, वह भी शुद्ध रहते हैं और उन्हें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे शुद्ध भक्ति शुद्ध है तो शुद्ध भक्ति करने वाले जो शुद्ध भक्त हैं वो भी शुद्ध हैं, इसलिए उनको कभी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कहाँ पे? शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है वो पहले से ही मुक्त अवस्था में कहलाता है। हाँ, तो आगे पढ़िए अभी।
जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उससे तो मंदिर में केवल अर्चा पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है।
इसकी चर्चा तो हो चुकी है पिछले श्लोक में। हाँ,
किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की
तो कनिष्ठ अधिकारी भेद नहीं कर सकता है, मध्यम अधिकारी ज्ञान के आधार पर भेद करता है और उत्तम अधिकारी भेद नहीं करता है। कनिष्ठ नहीं कर सकता है, उत्तम नहीं करता है, अंतर है ना? ठीक है।
तो शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों को आलोचना नहीं करना चाहिए।
अभी ये दोषों की चर्चा करेंगे कि प्राकृत दृष्टि की चर्चा अभी कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। पहला दोष,
यदि ऐसे दोष हैं, यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ऐसे जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा है, जो गुरु का मुख्य कार्य है।
हाँ, तो यहाँ पर कौन से दोष की बात की गई है? शारीरिक दोष, पहली बात। अच्छा, आगे पढ़िए।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अपि चेतेषु दुराचारो भजते मां निर्मुञ्जीवात्।
अपि
चेतेषु दुराचारो भजते मां निर्मुञ्जीवात्। साधारेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो निशः। यदि कोई भक्त ऋणित कर्म करे, यदि कोई घृणित कर्म करेगी तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य भक्ति नहीं समझना चाहिए।
सामान्य व्यक्ति, तो ये दूसरा है कि तथाकथित ऐसे प्रतीत भी हो कि वो कोई घृणित कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो दृढ़ता से भक्ति में लगा हुआ है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तो ये दूसरा उदाहरण है प्राकृत दृष्टि का। अब तीसरा, जन्म का। तो आप ऐसे लिखते जाइए, पहला क्या है? शारीरिक दोष। दूसरा घृणित कार्य, तीसरा जन्म। तो अब पढ़िए, जन्म की चर्चा काफी लंबी है। हाँ पढ़िए।
शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्म लो ना जन्म हो, किंतु यदि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर गोस्वामी के परिवार को आधारित नहीं होना चाहिए। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम छह गोस्वामी की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी तो एक परिवार से एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे। अतः उन्होंने अपना नाम कबीर खास तथा शंकर मल्लिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाया। अतः गोस्वामी उपाधि वंशगत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी है। स्वामी हो भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वो तो इंद्रियों का नियामक है। उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वो गोस्वामी परिवार में ना उत्पन्न हुआ हो।
तो यहाँ पे गोस्वामी के बारे में क्या कहा गया है, संक्षेप में आप में से कोई बताइए। अभी जिस परिच्छेद को हमने पढ़ा, हाँ माता जी बताइए। तो फिर इसका तात्पर्य क्या है या इसका निष्कर्ष क्या है? उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी ओर शुद्ध भक्त होते हैं, गोस्वामी तो होते ही हैं। ऐसे कोई हैं जो कहते हैं कि हमारा जन्म एक गोस्वामी परिवार में हुआ है, इसलिए हम भी गोस्वामी हैं। तो इन्हें जाति गोसाई कहते हैं। ये अपसंप्रदाय है, जाति गोसाई। गोसाई मतलब गोस्वामी। अपसंप्रदाय मतलब वो ऐसे पंथ हैं जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे पहले, परंतु कहीं तो आगे चल के गलत सिद्धांत या अपसिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किए, अपसिद्धांतों को, और इसलिए उन्हें अपसंप्रदाय कहे गए। कोई उदाहरण दे सकते हैं अपसंप्रदायों के? चर्चा ऐसे हुई है पिछले एक दो अपसंप्रदायों की। आउल बाउल, फिर साई बाबा नहीं। जो अपसंप्रदाय कौन है, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से पहले जुड़े हुए थे परंतु बाद में कहीं तो किसी अपसिद्धांत का, गलत सिद्धांत का स्वीकार करने से वो कुछ अलग ही हो गए। देखने में गौड़ी वैष्णव दिखते हैं लेकिन महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, कहीं न कहीं तो कुछ फर्क है। आउल बाउल, कर्ता भज, प्राकृत सहजीय, ऐसे कहीं भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे 12 या 13 अपसंप्रदायों को देखा था, उनका लिस्ट किया है उन्होंने। ऐसे अनेक हैं, आउल बाउल, कर्ता भज, प्राकृत सहजीय, सखी भेकी, अतिवादी, अतिवेदी, हाँ ऐसे कई हैं। और आजकल हमारे इस्कॉन में भी एक अपसंप्रदाय हो गया है, ऋत्विक। ऋत्विक कि हमें गुरु नहीं चाहिए सीधे, ये भी एक अपसंप्रदाय हो गया ये। अच्छा, इसी विषय में चर्चा अगले परिच्छेद में भी चलेगी। हाँ चलाइए। अच्छा एक मिनट, तो ये जाति गोसाई ये भी एक अपसंप्रदाय है। उनमें से जाति गोसाई, इनका क्या है सिद्धांत कि जिसने एक गोस्वामी परिवार में जन्म लिया है वो भी गोस्वामी हो जाता है। परंतु महाप्रभु का सिद्धांत क्या है, किसी भी परिवार में भले आपने जन्म लिया हो, अगर गुण से कर्म से आप गोस्वामी हैं तो आपको गोस्वामी माना जाएगा, आपकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि आपका गोस्वामी परिवार में भी जन्म क्यों ना हुआ हो लेकिन ये गुण या ये लक्षण आपके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो आप गोस्वामी कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को गोस्वामी कहते हैं इसलिए उनको अपसंप्रदाय कहते हैं। और विशेष करके ये जाति गोसाई के ऐसे थोड़े उदाहरण हैं जो नित्यानंद प्रभु या अद्वैत आचार्य के वंशज हैं, तो कहते हम तो नित्यानंद वंशी हैं, अद्वैत वंशी हैं, भले हों वैष्णवी हों लेकिन वो हैं इसलिए दूसरों की उपेक्षा नहीं कर सकते, दूसरे उनसे कोई कम नहीं है। केवल उन्होंने अद्वैत वंश में जन्म लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद ब खुद इसकी वजह से शुद्ध भक्त बन गए, नहीं ऐसा नहीं है।
उनकी
उपेक्षा की जा सकती है किसकी, जो भक्त हो चाहे इस वंश में हो या न हो, अगर अद्वैत वंश में कोई शुद्ध भक्त निकले तो क्यों नहीं सम्मान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, उसकी उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु के तो शिष्य अनेक थे, पुत्र अनेक भी थे ना, उनके तो प्रामाणिक पुत्र वीरभद्र थे लेकिन उनके और पुत्र भी थे तो उनसे तो वंश आगे चलता गया, लेकिन वीरभद्र गोसाई प्रामाणिक माने जाते हैं, वो भी अवतार माने जाते हैं, वो भी विष्णु तत्व माने जाते हैं, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़िए। तो इसी बात को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं कि ये अमेरिकन गोस्वामी, अरे ये थोड़ी सन्यासी हो सकते हैं, अमेरिकी हैं, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम तो सच्चे गोस्वामी हैं, ये लोग तो अमेरिका से आए, इधर उधर से आए, अब ये कैसे गोस्वामी हो सकते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उनके अंदर गोस्वामी के गुण या लक्षण है या नहीं, या अपने अंदर है या नहीं, वो भी परीक्षा नहीं करते। हाँ आगे इसके बारे में एक घटना है कि जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को, पहले विदेशी शिष्यों को यहां लेकर आए थे पहली बार, तो उनके भक्त इधर उधर मंदिरों में गए तो किसी एक ब्राह्मण से मिले जो पुजारी थे, गोस्वामी थे किसी मंदिर में, तो उन्होंने देखा कि इनको भी ये लोग अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो उस गोस्वामी ने उस भक्त की प्रशंसा की कि वाह आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, ऐसी सेवा करते रहिए भगवान कृष्ण की और अगले जन्म में आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, फिर आप जीवन को सफल बना पाएंगे। तो ये भक्त ने सुना ये बात, तो क्या किया भक्त ने, भक्त ने आके प्रभुपाद जी से पूछा कि ये तो ऐसे कह रहे हैं गोस्वामी जी, तो प्रभुपाद ने कहा कि उनसे जाके कहो कि आपकी सेवा, आपके जो ब्राह्मण की सेवा है वो गोस्वामी की सेवा अच्छी तरह से करो तो अगले जन्म में आपको इस्कॉन में जन्म मिलेगा और विश्व भर में आप प्रचार करने के लिए योग्य हो जाओगे कृष्ण भावनामृत का। तो केवल गोस्वामी पद, ये जाति गोसाई होकर उसके बारे में अभिमान होना कि मैं गोस्वामी हूं, जैसे यहां प्रभुपाद कहने वाले हैं आने वाले परिच्छेद में, इससे कोई फायदा नहीं होता, वास्तविक गोस्वामी होना चाहिए हमें। हाँ पढ़िए।
या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार बन गया है, उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि यूं ही जो भौतिक दृष्टि से गर्भित हो उठता है उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है।
जो ही वो गर्भित हो जाता है त्यों ही उसका पतन हो जाता है।
यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है।
ईर्ष्या और द्वेष के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है।
यह आंदोलन उन परम हंसों के लिए है जो समस्त द्वेष से रहित है, परम
निर्मत्सराणाम।
मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। वो ही कोई ईर्ष्या करता है तो वह परमहंस के पद से गिर जाता है।
तो ठीक है, ये विशेष करके जाति गोसाएं या जन्म पे आधारित जो हम प्राकृत दोष देखते हैं लोगों के वैष्णव के शरीर में या वैष्णव के जीवन में, ये दोष या ऐसी दृष्टि से वैष्णव को देखना ये वर्जित है। तो जब गलत दृष्टि से वैष्णव को देखते हैं तो वैष्णव अपराध हो जाता है। केवल हम देखते नहीं हैं, सोचते हैं और फिर बोलते भी हैं, कुछ करते भी हैं, तो वैष्णव अपराध हो ही जाता है। तो अब वैष्णव अपराध कितना भयंकर है इसकी चर्चा आने वाले परिच्छेद में प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हाँ पढ़िए।
यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी मता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उत्तम हाथी एक उन्मत्त हाथी नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब वो सुंदर कटे छठे ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। अतः इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव को सभी तरह से सहायता करनी चाहिए।
तो कैसे वैष्णव समाज में व्यवहार होना चाहिए परस्पर भक्तों के बीच, इसका वर्णन यहाँ हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी पढ़िए।
कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से ही शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है।
तो ये भी अन्य भौतिक दृष्टि से, ये चौथा है प्राकृत दृष्टि का उदाहरण चौथा। वैष्णव को इस प्रकार से वैष्णव के कार्यों को भौतिक दृष्टि से देखना। हाँ
विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिकारक है। अतः शुद्ध भक्त का व्यवहारिक स्वरूप नहीं देखना चाहिए अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है।
तो यही इसी बात को आगे अगले परिच्छेद में बताया गया है कि भौतिक दृष्टि को देखना इसके उदाहरण क्या है देख रहे। हाँ जी पढ़िए।
जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी वर्ग के भक्तों या किसी भूखंड तक ही सीमित मानते हैं वे ही सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने की आदि हैं।
हाँ जैसे ये इस प्रांत का भक्त है, वो उस देश का भक्त है, ये भाषा बोलने वाला भक्त है, ये सब है भौतिक दृष्टि से देखना एक भक्त को, उदाहरण है ये सब। पढ़िए।
ऐसे नवदीक्षित उच्च भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं।
ये पांचवा भी कि फिर एक महाभागवत या उत्तम अधिकारी व्यक्ति जो भक्त हैं उनके प्रति ईर्ष्या करना या उनके प्रति दुर्व्यवहार करना, उनकी निंदा करना, उनके जो प्रचंड कार्य होते हैं प्रचार क्षेत्र में उसको उसकी निंदा करना। हाँ, तो प्रभुपाद जी स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं।
इस कृष्ण महाप्रभु का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसे कठिनाई का अनुभव होता है, दुर्भाग्यवश हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण महाप्रभु को प्रसादित करने के असाधारण कार्य को महत्ता को नहीं समझ पाते। वे हम सबों को अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं। हमें उनके इस दृष्ट कार्य एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक भक्ति संपन्न पुरुष को भगवान की गोविंद सेवा में संलग्न है उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण महाप्रभु आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता।
कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। तो ये पांचवा पॉइंट यहाँ है कि वैष्णव की निंदा करना या उसकी दुर्व्यवहार करना, आलोचना करना। हाँ, आगे पढ़िए।
जब कोई इस प्रकार से शुद्ध आलोचना करता है तो वो अपराध
बहुत नुकसान होता है। बल्कि महान वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध करने से बहुत नुकसान होता है।
अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, शक्ति संपन्न वैष्णव के प्रति ईर्ष्या न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करना अपराधपूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों को आधार पर अंतर करना चाहिए।
तो ये वाला ये छठा लक्षण है कि जो ऐसे बहुत उन्नत भक्त होते हैं, बहुत शक्तिशाली भक्त होते हैं, तो उनको दंड देना या अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही उनके प्रति करना या उनको सलाह देना, ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए वैष्णव को, ये भी ठीक नहीं। ये भी प्राकृत दृष्टि है उस वैष्णव के प्रति जो कि निषिद्ध है। तो ये छठा पॉइंट हो गया। इसके चार्ट हम आपको दिखाएंगे, सारे तात्पर्य का सार इसमें आ जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए।
तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में सिद्ध रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है।
ठीक है, इसको घुमाइए। और ये जो छह पॉइंट है, छह दृष्टि, ये चार्ट में आप पाएंगे। अभी छह चेतावनी वैष्णव निंदा की या भौतिक दृष्टि के रूप गोस्वामी ने दिए हैं, प्रभुपाद जी भी यहां दे रहे हैं। तात्पर्य से लिए हुआ है सब कुछ। पहला, शारीरिक दोष के कारण निंदा करना या आलोचना करना उनकी। दूसरा, जाति के कारण उनकी निंदा करना, ये नीच जाति का है, उस जाति का है, विदेशी है। उदाहरण यहां प्रभुपाद जी ने दिए हैं जाति गोस्वामियों का, साथ साथ रूप और सनातन गोस्वामियों का भी उदाहरण दिया है कि जैसे वैसे तो वो थे ब्राह्मण कुल के, परंतु उन्होंने मुसलमानों का संग, यवनों का संग करके वो प्राय मुसलमान बन गए थे या ऐसे लोग मानते थे उनको, फिर भी उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ गोस्वामियों के गुण थे, इसलिए वो पूरी तरह से गोस्वामी नाम से जाने जाने के लिए योग्य थे। तो दूसरी ओर जो जाति गोस्वामी हैं, जो या नित्यानंद वंश के आने में आने वाले हैं, अद्वैत वंश में, कभी कभी ऐसा देखा जाता है उनके अंदर ऐसे गुण नहीं होते हैं, फिर भी अपने आप को गोस्वामी कहलाते हैं वो। फिर विदेशी गोस्वामी, ये भी उदाहरण श्री प्रभुपाद जी देते हैं तात्पर्य में। तीसरी चेतावनी है, भक्त द्वारा घृणित कार्य को की निंदा करना। ये ऐसे महान भक्त के बारे में हम कह रहे हैं जो भक्ति में पूरी तरह से स्थित हैं। कभी कभी वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, वैष्णव को कार्यकलापों को समझना कभी कभी मुश्किल होता है, विशेष करके जो पहुंचे हुए जो बहुत ही उन्नत वैष्णव होते हैं उनके कार्यों को समझना मुश्किल होता है। जैसे नित्यानंद प्रभु कभी अवधूत थे, कभी कभी ऐसे विचित्र कार्य कर बैठते थे, भौतिक दृष्टि से लोग देखते थे, उनकी निंदा करते थे, जो उनके लिए अच्छा नहीं था। ये चौथा पॉइंट है कि भौतिक दृष्टि से भेद करना, जैसे समाज देश आदि के आधार पर। फिर अगला पॉइंट, ऐसे पहुंचे हुए या उन्नत वैष्णव से ईर्ष्या करना या उनसे दुर्व्यवहार करना, उनकी आलोचना करना। और छठा पॉइंट क्या है, उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या त्रुटियां को सुधार करने का प्रयास करना, उनको सलाह देना कि भी आपने ये गलती की, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। देखिए, गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य के साथ ऐसा वो करें, परंतु यहां किस प्रकार के भक्त की बात की जा रही है, जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, अनुभवी हैं, शक्तिशाली भक्त हैं, ऐसे भक्त की बात की जा रही है। और अगर करें भी तो कोई उनके बहुत निकट के हों। कल हम सातवें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल क्या है, संडे है। अच्छा अच्छा कल वैसे क्लास है आपके, है ना? तो हम तैयार हैं आने के लिए, आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, गौर प्रेमानंदे।